का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया विकराल विनाश खड़ा आगे
शांति। तो आप सभी महसूस करते होंगे जैसे कि आपको ये फिर से नया लगता है, एक स्टडी का समय मिला है, है ना। तो अभी जो विषय है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, कर्म की गुह्य गति और कर्मातीत स्थिति। बाबा ने हमें संगम युग में ये लक्ष्य दिया है कि तुम्हें धीरे 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 करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। आप हम सब जानते हैं कि मानव जीवन के अंदर कर्म ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जैसे मुरली में कभी कभी बाबा कहते हैं कि चलो संकल्प में तो कुछ आ गया परंतु कर्म में बिल्कुल नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि एक बार कर्म किया तो फिर उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। हर कर्म अपने फल के साथ जुटा हुआ है। विशेष बात यह है कि कर्म और फल ऐसा है जो हर कर्म का फल एक जैसा है। जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, व्यक्ति कोई भी हो, है ना। परंतु हरेक को अपने कर्म का कर्म अनुसार फल मिलता है। दुनिया में लोग जो कहते हैं अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमारी जो भी वर्तमान परिस्थिति होती है, हर पल ले लीजिए, हर क्षण हर पल हमारी जो भी स्थिति है, चाहे वो बाह्य स्थिति या मन की स्थिति जो भी है, वो हमारे उस समय हमारे जो भी कर्म है उसका हिसाब किताब का परिणाम होता है, फल होता है, रिजल्ट होता है, हर पल, है ना। तो इसीलिए फिर हर पल हमारे पास दो चॉइस होती है, दो बात होती है। एक कि हम कर्म को भोगते हैं, परिस्थिति अनुसार कर्म को भोगना, और दूसरा फिर कर्म करना। दो बात होती है ना, एक हमारे सामने कर्म के फल स्वरूप परिस्थिति आती है और दूसरा हमारे लिए ओपन क्या है कि हम कर्म करते हैं। सृष्टि चक्र जो है फिरता है, है ना। सृष्टि चक्र के फिरने का जो पावर है, मूल है, वो भी क्या है, कर्म है, है ना। जैसे बाबा कहते हैं हमें कि परम धाम से आत्मा जैसे आती है, जैसे गर्भ में प्रवेश किया और कर्म का हिसाब किताब शुरू। इसलिए शिव बाबा कहते कि मैं आता हूं परंतु मैं गर्भ में नहीं आता हूं, अगर आया तो हिसाब शुरू हो जाता। इसलिए बाबा कहते मैं तो तैयार बाबा के, ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूं और आके खाली क्या करता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, दो काम करता हूं खाली, देखता हूं और बोलता हूं, बाकी कुछ भी नहीं करता हूं, है ना, कहते हैं ना भाई भोग लगाते हो तो मैं नहीं खाता हूं भोग, है ना। तो इसलिए जब से आत्मा आई है इस दुनिया में, जैसे आई तब से हमारा कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन बनता जाता है। तो इस कर्म के जगत में कर्म के लिए जो बात है, जैसे कहा जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि ये बात अगर किसी ने समझ लिया कि भाई हरेक को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है, कोई भी छूट नहीं सकता, और जो करता है वही भोगता है, अर्थात मेरे को किए हुए कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा और आपके किए हुए कर्म का फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, मेरे किए हुए कर्म का फल कोई भी ले नहीं जा सकता, कोई ले जा सकता है? कर्म का फल कहो, जिसको भाग्य कहो, कोई किसी का भाग्य ले नहीं जा सकता, ये नक्की बात है। तो बाबा ने हमें ये बात समझा करके ये समझा दिया क्या कि भाई किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, द्वेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आप उसके कर्म का फल ले सकते हैं ना वो आपके कर्म का फल ले सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान बाबा जो हमारा खिंचवाते हैं वो कर्म के ऊपर खिंचवाते हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि भाई कर्म, और दूसरी बात बाबा कहते हैं कर्म की गुह्य गति, कर्म की गति बड़ी गुह्य है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं एक है कर्म का फल, हम जो भी कर्म करते हैं छोटा मोटा उसका फल भोगना पड़ता है, ओके। दूसरी बात, जब हम कर्म करते हैं तो उस समय उस कर्म का हमारे मन पर असर होता है। एक बार कर्म किया फिर दोबारा वो कर्म करने का फोर्स बन जाता है। कर्म कोई भी हो, चाहे कोई गलत कर्म करता है, समझो झूठ बोलता है, एक व्यक्ति ने एक बार झूठ बोला तो ओके, उसके झूठ बोलने का फल तो उसको मिलेगा, पर साथ साथ क्या होगा, दोबारा झूठ बोलने के लिए उसको फोर्स मिलेगा, है ना। फिर दो बार बोल दिया तो फिर क्या होगा, तीसरी बार उसको इजी हो जाएगा झूठ बोलना, है ना, ये फोर्स बन जाता है। एक बार किया हुआ कर्म दोबारा कर्म करने के लिए जैसे कि फोर्स बन जाता है, और जिसको बाबा फिर कहते फिर उसका आदत बन जाता है और फिर संस्कार बन जाता है। संस्कार का अर्थ यह है कि हमारी वो फिर वृत्ति बन जाती है, विचारधारा बन जाती है। इसीलिए ड्रामा के अंदर अब तक बाबा कहते अब तक हमने जो कर्म किए पिछले 63 जन्मों से, जो भी कर्म किए हैं, है ना, कोई ना कोई विकार के वश कोई ना कोई कर्म जरूर किया है जिससे हमारी विचारधारा बदल गई। यह है गति की बात, गुह्य गति की बात यह है कि विचारधारा इतनी जबरदस्त बदल गई। जो सबसे पहली बात जो बदल गई वो क्या, कि हमने देह को ही महत्व देना शुरू कर दिया। यहां तक कि हमें जो कुछ महसूस होता है सुख या दुख, उसका आधार हमने क्या समझ लिया, देह को ही समझ लिया। देह का भान एकदम गहराई से हमारे में बैठ गया, आत्मा में देह का भान एकदम बैठ गया। जो आपको पता है कि अभी स्थिति ऐसी बन गई होती है यूजुअली कि सपन में भी आप देह को नहीं भूल सकते, है ना। जैसे सपन में भी आप बहन है तो आपको सपने में लगेगा कि मैं भाई हूं, नहीं। भाई होगा उसको सपन में लगेगा कि मैं बहन हूं, नेवर। इतना डीप डाउन गहराई में ये हमारी जैसे कि वृत्ति बन जाती है। तो अभी संगम युग में आकर के बाबा ने हमें बताया है कि अब तक आपने जो कुछ किया है उसका फल आज की हमारी स्थिति है। अभी बाबा हमें आकर के हर बात को समझाते हैं। कई लोगों को यहां आकर के फिर जब बाबा बात बताते हैं, कर्म के हिसाब किताब की बात बताते हैं, तो अपना ही सोच करके डरते हैं, है ना, कि क्या होगा, हमें अपना कर्म का सब हिसाब किताब भोगना पड़ेगा, क्या होगा, क्या हो सकता है। वैसे तो कर्म का नियम है कि कोई कर्म के फल से मुक्त हो ही नहीं सकता है। कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी करके, पर उसको अपने कर्म का फल हिसाब किताब भाग्य जो भी कहो वो जरूर भोगना ही पड़ता है। परंतु अभी वर्तमान समय बाबा ने संगम युग में हमें एक एक्सेप्शन दिया, एक बात बताई। क्या बात बताई कि भाई योग से क्या होता है, विकर्म विनाश होता है। किए हुए पाप कर्म हैं परंतु योग से विकर्म विनाश होता है। कोई ने कैसे भी कर्म कितने भी किए पर अगर योग यथार्थ रूप से लगता है तो विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो कई पूछते हैं कि क्या होता है, होता है क्या, क्या कहेंगे, हा? तो फिर कैसे मुक्त हुआ, विकर्म विनाश कैसे हुआ, हा? वो तो अलग बात है, आगे तो हम नहीं करेंगे ना, परंतु पहले मैंने जो किए हैं, हाँ, एहसास नहीं होगा, हाँ, हल्का हो जाएगा, सहने की ताकत हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, ठीक बात है, आधा माफ हो जाएगा वो भी ठीक बात है, खत्म नहीं किया। तो बात यह है कि बाबा ने हमें जो अभी आके ज्ञान दिया है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है वो ये है कि मैं आत्मा हूं। इसको ऐसे कहते हैं, जैसे समझने के लिए ऐसे कहते हैं कि जैसे सपन में किसी को सपन आता है ना, तो सपने में देखता है कि मैंने ये गुनाह कर लिया, फिर मेरे को पनिशमेंट हो गई, तो समझो पनिशमेंट हुई कि मेरे को जेल में 15 साल तक जेल में रहना है। नींद में महसूस करता है 15 साल, तो फिर 15 साल में से 1 साल गुजरा, 2 साल, अभी 13 साल बाकी है सपन में। इतने में आंख खुल गई तो क्या हुआ, क्या होगा फिर, क्या हुआ, 13 साल खत्म है ना, सजा तो माफ हो गई ना, माफ मीन्स की खत्म ही हो गई ना। तो ये है नींद और अवेयरनेस, जागृति। नहीं, ये तो मैं 2 साल तो महसूस कर लिया ना कि 2 साल तो मैंने जेल में रहा, अब 13 साल बाकी है, फिर खुली आंख तो 13 साल खत्म, है कि नहीं है? हाँ क्या? हाँ थोड़ी देर थोड़ी हुई पर महसूस होगा, जैसे बाबा नहीं कहते कि सेकंड में, लास्ट मोमेंट जो बाबा पनिशमेंट देंगे वो होगा सेकंड, पर लगेगा जैसे सालों साल से। महसूसता ही इंपॉर्टेंट बात है। टाइम तो कंपैरेटिव है, समय कुछ है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल कॉन्शियसनेस। क्यों बाबा रोज 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 आप देखेंगे मुरली में मैक्सिमम बार यही बात आएगी कि आप अपने आप को आत्मा महसूस करें। अच्छा विकर्म विनाश कैसे होते हैं? क्योंकि समझो विकर्म हमने शरीर के द्वारा किया है ना, तो भोगना भी शरीर के द्वारा है। अगर जिस समय भोगना है, इस समय इस मोमेंट मुझे भोगना है, परंतु मेरा शरीर का भान ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे भोगेंगे? बिना शरीर के तो मैं भोग नहीं सकती हूं ना। तो इसीलिए उस क्षण का जो हमारा कर्मों का फल होगा वो उस क्षण केवल केवल उस क्षण हमारा खत्म हो जाता है, समझा? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि योग का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए। निशानी क्या है? कहीं पूछते हैं कि हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? तो निशानी ये है कि मे भी हमने क्या कर्म किया हमें पता नहीं है, परंतु मैक्सिमम ये हो सकता है कि हमारे कर्म के फलस्वरूप हमें बाधाएं आ सकती है। कर्म के फलस्वरूप हमारे पुरुषार्थ में, हमारी रूहानी यात्रा में इस रोड पे स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं, है ना? कर्म के फल के हिसाब से स्पीड ब्रेकर से हम जल्दी से आगे जा नहीं सकते। जितना जितना बाबा को प्यार से याद करते हैं, जितना जितना आत्माभिमानी बनते जाते हैं, उतना हमारा पुरुषार्थ का जो रास्ता है ना वो सरल होता जाता है। बाधाएं कम होती जाती है ना, समस्याएं कम होती जाएंगी, बाधाएं कम होती जाएगी और आपका पुरुषार्थ का रास्ता सहज बनता जाएगा। तो एक बात ये है। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम तो अपनी तरफ से पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी वापस घर जाने के लिए आपको केवल खुद को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू करना पड़ेगा। कर्म का हम हिसाब किताब चुकतू केवल खुद के साथ नहीं होता परंतु बहुतों के साथ होता है। आप सोचिए कि हमने जब से जन्म लिया तब से, जन्म लिया तब से है ना, माता पिता भाई बहन किसी से लिया किसी को दिया, हिसाब किताब बनता जाता बनता जाता। अब आके अंतिम समय में हमें वापस घर जाना है, आत्मा को वापस घर जाना है ना। कैसे जाएगी आत्मा? सब कुछ छोड़ के वापस घर जाएगी है ना। तो इजीली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ के जो भी हिसाब किताब है वो चुकतु करना। क्योंकि जैसे आप यहाँ आते हैं, आप आए यहाँ आने के लिए आपने डिसाइड किया तो खींचेंगे लोग है ना, जहां जहां हमारा हिसाब किताब होगा, चाहे आपके बच्चे बोलेंगे ना आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं भाई, नहीं जा सकते है ना। कोई भी कोई कार्य है बोला नहीं हमारे घर शादी और आप चले जाएंगे क्या, ये तो आप नहीं जा सकते। ऑफिस में बोलेंगे इतना काम है और आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, आप नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है। हमें कुछ भी करने के लिए हमारे हिसाब किताब हमें सब तरफ से खींचते हैं। फाइनल वापस घर जाने की बात तो और है, पर अब अभी बाबा के पास जाने के लिए भी हिसाब किताब खींचते हैं। योग में बैठने के लिए हम यहां बैठते हैं, बाबा के पास जाना है, तुरंत चली जाए बुद्धि वहां, एक बार तो चली जाती है पर फिर वो खींचती है।
भटका देती है, खींचती है, खींचती है किसी भी बात में। इसलिए बाबा ने हमें कहा है देह सहित देह के सर्व संबंध और देह के पदार्थों से बुद्धि योग हटाओ। बाबा तो कह देता है, परंतु करने के लिए क्या चाहिए, है ना? करने के लिए हिसाब किताब को पूरा करना है। तो अभी जब किसी का हिसाब किताब पूरा करना होता है तो क्या बातें होती है? हिसाब किताब में दो बातें होती है, क्या होती है? एक लेना और एक देना। अच्छा, तो जिसको देना है उसके लिए क्या करेंगे? वो हमारे हाथ में है, देना हमारे हाथ में है, देके खत्म करो, है ना? जो भी मांगता है, मन बुद्धि को ऐसा बनाना है जिसके लिए बाबा हमें ये कहा, देह और देह के संबंध पर देह के पदार्थों से बुद्धि योग को हटाओ। तो मन को जितना जितना आप हटाएंगे बुद्धि योग को, तभी ये पॉसिबल है कि जो मांगता है उसको देके खत्म करो। नहीं तो पर्सनल में मन बुद्धि ऐसा होता है जो व्यक्ति जानता है तो भी देना नहीं चाहता है, और फिर सोचता है मेरा मन क्यों नहीं बाबा में लगता है। एक छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ। एक बहन हमारे पास आई, बीके, कई सालों से बीके, तो आके बात करती है, कहती आजकल तो मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब फ्रैक्चर हो गया एक बार, फ्रैक्चर अच्छा हुआ तो फिर बुखार आ गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वो थोड़ा अच्छा हुआ तो घर में बेटी बीमार हो गई, पति बीमार, मत चलता ही रहता है कंटिन्यूअस, कहते ऐसा मेरा समय चल रहा है। बात करते करते खुद ही कहती है, पर मेरी परेशानी का भी एक कारण है। मगर क्या कारण है भाई? कौन कारण? कहते मेरी सास। अरे अच्छा, मैंने कहा कहाँ रहती है? आपके साथ रहती है? कहते नहीं, वो तो मर चुकी है। मर चुकी है, ये रियल बात है, हा? मर चुकी है। तो वो मर चुकी है, मरने के बाद कैसे परेशान कर सकती है? बोला रोज रात को सपने में आती है। क्यों आती है? तो फिर उसने बताया सार, क्या कारण है। कहती है ऐसा है कि जब उसकी मृत्यु हुई अंतिम समय में केवल मैं ही उसके पास थी, तो मरते समय उसने मुझे कहा कि देखो मेरी दो सोने की चूड़ियां हैं, वो मैं तुमको देती हूं, एक तुम रखना और एक मेरी बेटी को देना, है ना? तो मैंने बेटी को नहीं दिया है। इसीलिए वो रोज सपन में आया। मैंने तो इसी बातें दे दो ना उसको, फिर दे दो भाई, उसकी है, तुमको पता है, फिर देना चाहिए। तो वो ही मन नहीं मानता, वो मन मानता नहीं है, इतनी परेशानी है, पता है। आप देखो मन कैसा होता है, ये ज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात नहीं है। हाँ है, इसलिए जानबूझ के उसको महसूस होती है कि मुझे परेशान कोई नहीं करता है, परंतु हो रही है। मन ऐसा है, मन नहीं छोड़ेगा। हम कहते हैं ना कि भाई मन ही मित्र है, मन ही दुश्मन है, और सब आपको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, चलो भूल जाओ, पर मन नहीं भूलने देता। तो ये है कि जिसका, इसलिए मन में अपने आप को देखना है। ये ज्ञान बाबा का जो है केवल सुनने के लिए नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखना है कि कहीं पर भी ऐसा हिसाब किताब है। तो जिसको देना है उसको पहले ही दे के खत्म करो, ताकि किसी का भी हमारे से, हमारे लिए किसी का संकल्प ना चले केले के बैठ गए हैं, हमको देते नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, सहज नहीं है, सहज नहीं है, पर बाबा ने ज्ञान हमें इसलिए ताकत दिया, इसमें ताकत चाहिए, इसमें क्या चाहिए, मन बुद्धि की ताकत चाहिए जो व्यक्ति को देख के खत्म करेगा। फिर भी कंपैरेटिवली इजी इसलिए कहा जाए कि वो मेरे हाथ में है ना, इसका पुरुषार्थ मुझे करना है, मुझे अपने मन को समझाना है, तो देख के खत्म करो। दूसरी बात है लेना, उसको क्या करेंगे? मुझे लेना है पर वो मेरे हाथ में नहीं है ना। सामने वाला बंदा दे तो मैं लू ना, नहीं तो कैसे लूंगी। और जब तक वो हिसाब किताब बाकी है तभी भी हमारा मन बंधा हुआ रहेगा, हिसाब किताब तो बाकी है। तो क्या करना, माफ कर देना, है ना। ये ऐसा इन लोगों का व्यापार में भी ऐसा होता है। व्यापारी लोग क्या करते हैं, चौपड़ा लिखते हैं, इनका बाकी, इनका बाकी, इनका बाकी, फिर साल भर में वो नहीं देता है तो क्या करते हैं, हिसाब को खत्म कर देते हैं, माफ कर, नहीं चाहिए तुम्हारे से, चलो जाओ। तो ये भी वृत्ति चाहिए, नहीं तो मन मानता नहीं। एक भाई आया, डिप्रेशन में था, इसी बात के प्रॉपर्टी की बात के लिए, तो जानता है, मतलब ज्ञान को सुनता है, जानते तो मैं सब कुछ जानता हूं, पर दिल मानता नहीं है ना, मन नहीं मानता है ना, तो मन बार बार वही सोचता है और फिर डिप्रेशन में आ जाता है। तो कहते हैं क्या हुआ, उसका अपनी बहुत ज्यादा जमीन वगैरह था, उसने अपने भाई के बेटे को संभालने के लिए दिया। अब वो कहता है कि मैं वापस नहीं दूंगा, है ना, काफी काफी कुछ जमीन थी तो नहीं दूंगा, 12 लाख या ऐसा कुछ, 15 लाख का था, तो नहीं दूंगा। तो बस वो नहीं देता है, वो महसूस हो रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, उसकी वाइफ भी साथ में आई थी, कहती हमको चाहिए ही नहीं। उसकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ था, वाइफ कहती देखो हमें इतना पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत है। अच्छा, हमारे 2 बेटे हैं, वो फॉरेन में रहते हैं, उनको भी नहीं चाहिए। उसने बोला कि पापा छोड़ दो, डोंट वरी, चिंता मत करो, नहीं चाहिए। वो बेचारा भाई कहता सच में कि सब लोग मना करते पर मेरा मन नहीं मानता। अब देखो ये मन की बात है ना, सबने बोला, वाइफ ने बोला, वाइफ कहती मैं इनको रोज समझाती हूँ कि अपने को चाहिए ही नहीं, फिर चिंता क्यों करते हो। बोला पर इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। जब तक आप उनको दिल से क्षमा नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, तब तक देखो कितना डेंजरस है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाते। तो ये बाबा ने बहुत बड़ी बात हमें समझाई है कि व्यक्ति का मन जो खराब होता है, मन डिस्टर्ब होता है, इसका मैक्सिमम रीजन ये होता है लेन देन का हिसाब किताब, चाहे वो स्थूल है, ये तो स्थूल बात बताई, या सूक्ष्म, है ना। मैंने किसी को मदद किया, अगर वो मुझे फिर समय पर मदद नहीं करता है तो क्या होता है, मन खराब होता है, मन खराब होता है। कई होते हैं कि हमने लाइफ टाइम इनको मदद किया, सेवादारी होते हैं, पर समय पर हमें नहीं मिला रिटर्न, तो मन बहुत खराब हो जाता है। मन खराब होता है इसका अर्थ ही है कि हमारा मन फंसा हुआ है। अगर मन डिस्टर्ब है तो मन बाबा को याद नहीं कर सकता है। बाबा को याद करने बैठेंगे, बाबा बाबा करेंगे, पर हर जरा बाबा को याद किया तुरंत वो बात याद आ जाती, बार बार वही बात याद आती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन को ऐसा बनाना है, और ऐसा बनाने के लिए अगेन बात वही आती है कि स्वयं को क्या समझना है, आत्मा। अब बाबा ने हमें ये एक ऐसा साधन दे दिया है कि स्वयं को आत्मा समझने से क्या होता है, नेक्स्ट नॉलेज क्या आता है आत्मा का, आप समझ, मैं तो आत्मा हूं, तो फिर आत्मा क्या सोचती है, हाँ क्या, हाँ बंधन मुक्त। आत्मा का नॉलेज क्या कहता है, आत्मा, बाबा कहते हैं कि भाई आत्मा तो आत्मा है, अकेली आई हूं और अकेले जाना है, न कुछ लेके आई हूं न कुछ लेके जाना है, है ना। ये कहना तो आसान है परंतु महसूस करना है, फील करना है, महसूस करना है कि आखिर क्या है, है ना। कोई ने मुझे दिया, कोई ने लिया, स्थूल में तो मुझे कुछ भी लेके देके जाना है ही नहीं, तो इसलिए मन को फ्री करने के लिए पर गहराई में जितना, जैसे आज का है ना सारा दिन अपने को समझना मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, तो जितना जितना हम अपने आप को आत्मा महसूस करते हैं, बाबा इसलिए बार बार कहते हैं हमें कि आप स्वयं को जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे उतना, जिसको कहते हैं कि हमारी धारणा होलसेल में हो सकती है, होलसेल में एक एक बात को धारण नहीं करना पड़ेगा, बहुत बातें ऑटोमेटिकली हमारे में आ ही जाती है। तो इसीलिए हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए है ना, हमें अपने आप को देखना है, समझना है, अपने मन को समझाना है और एज फार एज पॉसिबल धीरे 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 अपने मन को फ्री करना है। और उसके लिए फिर बाबा ने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बाबा कहते हैं ये याद रखो एक बात, तो ये कि हमें किसी को भी सहयोग देना है, भावना अंदर की भावना क्या होगी, सहयोग देना है, मुझे देना है, बाबा क्या कहते हैं हमें कि देना है, हम कहते हैं संगम युग में बाबा के बनने के बाद लेना केवल बाबा से है, जिसके लिए बाबा कहते मेरे भंडारे भरपूर है और 24 आवर्स ओपन है, जिसको कोई ताला लगा हुआ नहीं है, है ना, जितना चाहिए उतना लेना, किससे लेना, एक से है बस, बाकी सबको केवल देना है। तो एक सहयोग की, दूसरा सम्मान, सबको सम्मान देने का भाव मन में क्रिएट करना है, उत्पन्न करना है। सम्मान देने में, किसी को भी सम्मान देने में हमें पैसा नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है, पर हम देते हैं नहीं देते, कोई देगा तो भी हम बोलेंगे, कोई बोलेगा बेचारा कि भाई ये भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है, आप उसके लिए जानते ही नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब ये होगा आपको कोई पता नहीं है, भले मुझे पता होगा है ना, पर हम कहेंगे नहीं अच्छा ही देखो, तो भी व्यक्ति अच्छा ही देखने को तैयार नहीं। आज बाबा ने मूली में कहा ना, हाँ वो कैलकुलेटिव है ना, गिनती कर करके सम्मान, हम जो कि फ्री देना है, उसका कोई हमें पैसा नहीं लगता है, कुछ भी मेहनत भी नहीं लगती है, पर तो भी मन मानता नहीं, मन ऐसा है जबरदस्त है, मन मानता नहीं। आज बाबा ने मूली में कहा ना, क्या कहा, हाँ एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमी देखना, कमी देखना अच्छा लगता है, परंतु जिसको बाबा ने क्या कहा, वर्णन भी करते हैं और फिर कीर्तन भी करते हैं, है ना, कीर्तन, और बहुत वंडरफुल बात बता दिया, फिर लास्ट में मुझे मूली पढ़ते पढ़ते एकदम हंसी आ गई, कीर्तन मंडली बना लेते हैं, वंडर है ना, बाबा का भी सिखाने का जो तरीका है, हाँ तो ये मल्टीपल एक्शंस हो जाती है ना, एक एक है, एक बात एक व्यक्ति बताता है पर दस के मन में वो डाल देता है, तो कितनों के साथ एक साथ हिसाब किताब बनते हैं, आप सोचिए। इसलिए बाबा कहते कर्मों की गति बहुत गुही है, इसीलिए है कि वो कहाँ कहाँ जाकर के हिसाब किताब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए कभी कभी हंसी में मैं कहती हूं ऐसा कि हिसाब किताब इतना सूक्ष्म है कि बाय चांस समझो एक बार आपको कुछ मन में हो गया, मूड खराब हो गया, आपका मूड खराब हो गया और फिर खराब मूड में मुंह चढ़ा के आप घूम रहे हैं, तो मैं कहती हूं कि आप जितनों के आगे आए, समझो 100 लोगों ने आपको देखा आपका चढ़ा हुआ मुंह, तो आपको बदले में 100 बार चढ़े हुए मुंह वाले देखने पड़ेंगे नहीं ये हंसी आती है पर इट इज राइट, क्योंकि फिर आपको क्या है, सारा दिन में लोग ऐसे ही मिलते हैं, पर क्योंकि आपने ऐसा किया है तो आपको फलस्वरूप ऐसा मिलता है। तो सोचने की बात है कितना हमें ध्यान रख के कर्म करना है, जो बाबा कहते हैं कितना अटेंशन से हर कर्म को, हम हर कर्म रूपी कदम को, बाबा के कदम कदम बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है, कदम कदम। कौन सा कदम? हर कर्म रूपी कदम सोच समझ के, ध्यान रख के। और अब बाबा ने हमें इतना ज्ञान दे दिया है, इसलिए जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन गहराई से करते हैं, उतना स्वाभाविक रूप से हमारा अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रहता जाता है। अच्छा, अब बाबा की बात एक आती है, फिर कर्मातीत स्थिति लास्ट की बात है, पर उसके पहले आती है कि श्रेष्ठ कर्म करना। अभी बाबा ने हमें क्या सिखा रहे हैं? एक तो कर्मों का हिसाब किताब की बात है, कर्मों के फल की बात है, विकर्म विनाश की बात है, उसमें भी बाबा ने हमें एक चांस दे दिया है एक्स्ट्रा। और दूसरी बात है अभी कि कर्म की श्रेष्ठता, जिसके लिए बाबा हमें कहते, बाबा हमारा भाग्य बनाने आए। बाबा कुछ स्थूल नहीं देता है हमें, धन नहीं देता, वस्तु नहीं देता, क्या देता है? ज्ञान देता है, जिससे बाबा हमारा भाग्य बनाने आए हैं। और भाग्य का आधार क्या है? अगेन कर्म। सोच भाग्य का आधार नहीं है। कोई कितना भी अच्छा सोचे, बैठा बैठा सोचता रहे, उसका फल उसको प्राप्त होगा? नहीं। हाँ, उसके फल स्वरूप उसका मन बहुत अच्छा बन जाएगा, फिर जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। परंतु फल तो केवल कर्म के साथ ही जुटा हुआ है। और बाबा अभी हमें जो कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना देता हूं, है ना, विश्व का राज्य देता हूं। कैसा लगता है आपको? मिलेगा भाई, मिलेगा? क्या कहेंगे? हाँ नहीं, देखो ये भी कैलकुलेटिव है, कहने से थोड़ी मिलता है, कहने से नहीं मिलता, खुश होने से भी नहीं मिलता, समझा? केवल नशा चढ़ाने से भी नहीं मिलता, केवल करने से ही मिलता है, है ना? समझो जैसे कोई स्थूल में, कोई समझता मुझे डॉक्टर बनना है, कहने से बनेगा क्या? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब बनेंगे। उसी प्रकार हमें भी एक सोचने की बात है। आप सोचिए कि बाबा हमें कहते हैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा, अभी सोचो कि, पर हम तो नंबर वन बनना चाहते हैं ना, नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार वो तो अलग बात है। बाबा फिर इतना अच्छी तरह समझा देते हैं कि देखो प्रजा भी बोलेगी ना मेरा भारत, तो हम थोड़ी वो स्वीकार करेंगे, छोटे में तो स्वीकार नहीं करेंगे ना। तो सोचने की बात है कि अभी, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब एक्यूरेट है ना, हिसाब किताब से है। अभी आप सोचिए कि आप, हम जो कर्म करते हैं, कोई व्यक्ति आज कर्म करता है, आज समझो किसी को अपना घर बनाना है, आप सभी तो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, आपको पता है, हमें कम पता होता है, समझा? क्यों? क्योंकि हम तो बनाते ही नहीं है, हम तो बाबा का घर बनाते हैं, बाबा के बच्चे बनाते हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। पर आप लोगों को पता है कि एक व्यक्ति परिवार अपना घर बनाना चाहता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना कर्म करते करते ध्यान रखना पड़ता है, कितना बचत करते जाते हैं, तो एक मकान का मालिक बन सकते हैं, है? दो, चार, दस, पच्चीस, पचास मकान का मालिक बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो बाबा जो हमें कहते विश्व का मालिक बनने के लिए, आप सोचिए, है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे? उसका क्या उपाय है? श्रेष्ठ कर्म बाबा ने उसका भी बताया है। क्या बताया है? केवल हमारे लिए संगम युग के लिए ही बताया है। क्या बताया है उसके लिए युक्ति? बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कर्म सिखाता हूं जो एक का कितना फल मिलता है, पदम गुना फल मिल सकता है। कर्म का बाबा ने हमारे लिए अलग हिसाब किताब बना दिया। अभी तक जो दुनिया में हिसाब किताब चलता है, जैसा कर्म वैसा फल, जितना कर्म करेगा उतना फल मिलेगा। पर अभी हिसाब किताब बदल गया। क्या? हर एक के कर्म का फल भिन्न भिन्न बनता है ना? हर एक के कर्म का फल भिन्न भिन्न बनता है। किस आधार पर? व्यक्ति के मन की स्थिति के आधार पर। मन की स्थिति में मुख्य क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। तो अभी जो है कर्म, कर्म का फल, एक को कर्म का एक गुना फल मिलता है, दूसरे को 10 गुना मिलता है, कोई को बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली 100 गुना फल मिलता है, किसी को 1000, 10000, लाख, 10 लाख, पदम गुना, पदम तक की पॉसिबिलिटी है। एक का पदम गुना है ना प्राप्ति, एक का पदम गुना। हाँ, एक का पदम गुना होगा तो हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। किसी ने बाबा के यज्ञ में 1 रुपया दिया, समझो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उनको पदम मिल सकता है। कितना मिलता है वो हरेक के ऊपर आधार है, परंतु पॉसिबिलिटी है। किसी को 1 का 1000 भी मिल सकता है, किसी को 1 का 10000 भी, किसी को 1 का 1 भी है ना। तो जो हिसाब किताब है उसका जो आधार है वो हमारी मन की स्थिति है। कैसे होती मैं आपको बताती हूँ। जो हम करते हैं, अभी बाबा हमारे से करवाते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया ला रहा हूं, स्वर्ग ला रहा हूं। अगर वो चाहता तो अपने आप ला सकता था। मैं हमेशा कहती हूं कि वो तो ऑलमाइटी है भाई, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। रास्ते चलते व्यक्ति को पकड़ के जो चाहे सो करवा सकता है ना, जो चाहे सो करवा सकता है। परंतु नहीं, बाबा क्या कहते, नहीं मैं नहीं ऐसा करता हूं, मैं तो बच्चों के द्वारा ही, बच्चों की पूरी पूरी से है ना, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है, कौड़ी कौड़ी से बाबा विश्व का नया विश्व ला रहे हैं, हमारा भाग्य बनाने के लिए ला रहे हैं। पर हम, बाबा कहते हैं कि हमारे भाग्य का आधार इस पर है कि हम अपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कितनी आत्माओं का कल्याण करते हैं और कितना कल्याण करते हैं, कितनी आत्माओं का और कितना कल्याण करते हैं, अर्थात कितनों की स्थिति हम ऊंची बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते तुम पवित्र बनो और औरों को बनाओ। जब हम औरों को पवित्र बनाते हैं तो क्या हो गया कि उनके खुद पवित्र बनने से फिर उनकी कमाई बढ़ने लगती है, तो उसकी कमाई बढ़ने लगती है, उसका शेयर आपको कंटिन्यूअस मिलता जाता है। आप जितनों का जीवन बनाते हैं और वो फिर जितनों का जीवन बनाते हैं है ना, उन सब का शेयर आपको मिलता जाता है और आपका भाग्य, आपका खाता बढ़ता जाता है। एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि हमारे सेंटर से एक भाई, ग्रुप पूरा आया था यहाँ सेवा के लिए, तो एक भाई सेवा करके वापस आया 15 दिन के बाद। तो 15 दिन के बाद भी उसके चेहरे पर एकदम खुशी, उमंग, उल्लास, खुशी। तो मुझे आके बोलता है, बहन कमाल हो गया। मैं कहा कमाल, क्या कमाल हुआ? बोला बस कमाल हो गया। इतना अंदर में आनंद उसको की बात मत पूछो। तो मैंने कहा क्या हुआ बताइए, जैसे क्या हुआ बताओ, बताओ भाई क्या हुआ। तो कहता है कि उनकी ड्यूटी किचन में लगी हुई थी। किचन में वो सब पतीले भर भर के ठेले में ले जाते हैं ना, तो वो ठेला वो ले जा रहा था। तो हमारी दादी प्रकाशमणि, उस समय शांति मन की बात थी, उस समय दादी तो चक्कर लगाती थी ना किचन में, तो किचन में चक्कर लगाने चली गई। पर दादी आ रही है, उनको पता नहीं, वो तो वो ठेला लेके जा ही रहा है, आगे जा ही रहा है, तो पता नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, पीछे है। तो दादी ने, वो दादी आ रही थी, दादी ने थोड़ा उसके कंधे पे हाथ रख दिया, भाई थोड़ा, तो उसे पीछे देखा, पीछे देखा तो चौंक गया, दादी। बस दादी को सोच के उसको मन में इतना अतिंद्रिय सुख महसूस हो गया कि बात मत पूछो, दादी तो चली गई, अटा के दादी चली गई। पर उसके अंदर की जो स्थिति है वो इतनी हाईएस्ट हो गई कि बात मत पूछो। अब सोचिए किसका कारण क्या। आज हम हमारे में से कोई उनको बोले कि जरा हट बोले, अरे तुम हट के जाओ ना, मेरे को बोलते हो, मेरे को हाथ क्यों लगाया तुमने, है ना, तुरंत झगड़ा करने लग पड़ेंगे। अब देखो ये कारण क्या हुआ, दादी की स्थिति, आंतरिक स्थिति जो है वो इतनी ऊंची है जो किसी को अनजाने में स्पर्श करने में भी उसकी स्थिति एकदम ऊंची पड़ जाती। तो देखो हमारे कर्म का आधार क्या है, हमारी मन की स्थिति। तो मन की स्थिति में जितना पवित्रता होगी, नम्रता होगी, निरहंकारीपना होगा, है ना, ये जितना हमारे में होगा, हम बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, सेवा करते हुए भी, चाहे वो तन से सेवा कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं या वाणी से कर रहे हैं या धन से कर रहे हैं, कैसे भी कर, वो सभी कर्म है ना, हम समय दे रहे हैं, हमारा खजाना क्या है, हमारा खजाना है समय और संकल्प, और समय और संकल्प के द्वारा हमने जो जो अचीव किया है वो सभी हमारा खजाना है। तो उसको हम कैसे उपयोग करते हैं, है ना, अंतर है ना हर एक के अंदर। कोई करता है तो उनको लगता है मैं कितना किया, कभी कभी भाव क्या आ जाता है, मेरे जितना शायद कोई नहीं करता होगा, है ना, तो हम वो चाहते हैं कि हमने जो किया वो सबको पता चले, अथवा मन में आता है कि हम इतना करते हैं तो हमको पूछते ही नहीं, जबकि हम इतना करते हैं। कभी तन से भी सेवा सारा दिन करते हैं तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी कोई महिमा करे, है ना, कोई सारा दिन किसी ने काम किया हो और बहन बाहर से आवे उसको पता ना हो और दूसरे का नाम ले लेगा, अच्छा आज तो आपने बहुत काम किया लगता है, तो दूसरे की क्या हाल होगा। आप सोचिए क्या हाल होगा, है ना। तो उस समय हमारी स्थिति नॉर्मल अच्छी रहे उसके लिए हमें अपने को समझाना पड़ेगा, अपने को ज्ञान देना पड़ेगा। कई ऐसे मैंने देखे हैं सहयोग करने वाले, एज इफ कि वो इतना रिक्वेस्ट से सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग स्वीकार करेंगे, ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी जितना है उतना आप देखो, और करेंगे सबसे ज्यादा। यज्ञ की विशेषता ये है कि माताएं जो आपको लगेगा बिल्कुल कुछ समझती नहीं है, कमाती तो बिचारी होंगी नहीं, परंतु फिर भी यज्ञ का हिसाब किताब ऐसा है कि ज्यादा करने वाला कौन होता है, माताएं। वंडरफुल है ना, वंडरफुल है। कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों आते हैं युगल, तो भाई तो बेचारा कमाने वाला है ना, भाई 500 रुपया देगा और बहन नहीं कमाने वाली 1000 देगी, वंडर है। फिर भाई कहते इनको पता नहीं है ना वैल्यू का, कमाती नहीं है तो पता कैसे पड़ेगा। पर देखो ये हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब की बात है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी हमें उत्तम कर्म करने के लिए कर्म भी करना है। दोनों बात कर्म के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ कर्म और क्वांटिटी ऑफ कर्म, दोनों। क्वांटिटी भी, हम कितना श्रेष्ठ कर्म कितना करते हैं, है ना, स्वाभाविक बात है, जितना जो ज्यादा करेगा उतना वो ज्यादा ही पाएगा ना। कोई शाहूकार है और ज्यादा करता है तो कम पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी पाएगा। परंतु स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, कितना हम, जैसे हर एक बात में आता है, हमें निश्चय कितना है, मन की स्थिति क्या है, नम्रता भाव क्या है, वो सब काउंट करता है और हमारे कर्म का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। चलो कर्म करने में ज्यादा नहीं कि एक ग्लास पानी का ही दे दिया किसी को, पर समय पर, आवश्यकता पर, है ना, कितना नम्रता भाव से, कितना प्रेम भाव से हमने किया, वो हमारे कर्म की क्वालिटी को, कर्म के फल को मल्टीप्लाई करते। तो अभी हमें श्रेष्ठ कर्म करने, और श्रेष्ठ कर्म करने के बाद भी हमारी मन की स्थिति कैसी रहे, जिसको बाबा कहते कर्मातीत। कर्मातीत अर्थात हम कर्म के प्रभाव में न आए। अब करना तो केवल श्रेष्ठ कर्म है, परंतु मन इतना विचित्र है ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है, खुद खुद के कर्म से ही प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी के अंदर गुण है वे स्वच्छता का, बहुत अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर फिर क्या हो जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं करता है ना, स्वच्छता के प्रति भी लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, जो फिर कोई जरा भी ऊपर नीचे करेगा तो जबरदस्त गुस्सा आ जाता है, तो अगेन क्या हो गया, हमारा हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी संगम युग में, वैसे तो बाबा ने कहा कि भाई एकदम जब हिसाब किताब परफेक्ट एकदम पूरा हो जाएगा तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, वो अलग बात है, परंतु बाबा का बनने के बाद, धीरे धीरे परफेक्शन आने के बाद भी हमारा यज्ञ चालू रहा है और रहेगा, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम हैं, कर्म भी कर रहे हैं, परंतु जैसे कि मैंपन से उपराम होकर के, कर्तापन के भाव से परे होकर के कर रहे हैं, पर बिल्कुल निरअहंकारी भाव से। अहंकार का अर्थ अभिमान, वो एक मोटे रूप का है, पर बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ऐसी स्थिति में जो कर्म करते हैं तो फिजिकली भी कर्म के प्रभाव से उपराम रह सकते हैं। न केवल मेंटली बात है, पर फिजिकली, जो आपको पता होगा कि बाबा कहते हैं मुरली के अंदर हमेशा कि बाबा की याद में अगर आप 10 मील भी चले जाओ तो भी आपको थकावट नहीं लगेगी। थकावट तो लगनी चाहिए ना, वैसे लगनी चाहिए, परंतु अगर हम उस भान में नहीं है, हम चल रहे हैं वो भान में नहीं है, हम केवल बाबा की याद में हैं, वो ध्यान भी नहीं है कि हम चल रहे हैं, क्योंकि रूटीन का रास्ता है, रोड है, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, तो क्योंकि भान नहीं है कि हम चल रहे हैं, इसलिए उसका उसकी थकावट नहीं होती। बाबा की याद में है, देह का भान नहीं है, तो थकावट नहीं होती, समझा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब जो हमें रहना है बाबा के साथ, अब जो यज्ञ की सेवा में हम जो उपस्थित है, वो इस मनोभाव से है ना, कर्मातीत स्थिति से, कि जो कर रहे हैं बाबा करा रहे, जो कर रहे हैं बाबा करा रहे, और फ्रॉम डीप डाउन विद इन, मतलब अंदर में ऐसा भाव, इतना हमें गहराई में इसको धारणा करना है, जो सुबह में राजू भाई ने बड़ी अच्छी बात सुनाई है ना, और सच में दादी प्रकाशमणि जी की बात जो सुनाई, क्या सुनाई, हाँ, ऐसी ऐसी बातें नोट करके रखनी चाहिए माइंड में, है ना। तो फिर जब आप महसूस करना चाहेंगे तो आपको उसको आपको फॉलो करना इजी होगा। तो दादी के अंदर वो डीप डाउन था, डीप डाउन। जैसे एक बात बताते हैं, दादी के लिए भी कहा कि दादी को किसी ने पूछा कि दादी जी आपके तो बहुत फॉलोअर्स है। बोला बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। बोला इतने लोग हैं आपके, आपके फॉलोअर नहीं है। बोला नहीं, वो सब तो लीडर्स है। बाबा के घर आने वाले सभी क्या है, लीडर्स है, कोई फॉलोअर नहीं। आप देखो तो दादी का जो आंतरिक स्थिति, ऐसा नहीं कि अपने आप बन गई होंगी, दादी जन्मी ही ऐसी होंगी, नहीं। पुरुषार्थ, आंतरिक पुरुषार्थ जो बड़ी दादियों का चलता है, वो कॉन्स्टेंट अंदर में जो मनन चिंतन चलता है, मन की स्थिति बनाने का जो आधार है वो क्या है, संकल्प ही है। देखो संकल्प बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए संगम युग के अंदर हमें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, जो बाबा मिला है, केवल कहने मात्र नहीं, परंतु जैसे बाबा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। क्यों हूं सर्वशक्तिमान, क्यों सर्वशक्तिमान हूं? बाबा मुरली में कहते हैं, मैं क्यों सर्वशक्तिमान हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं, क्योंकि मैं पवित्रता का सागर हूं, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो आत्मा की जो ताकत है, आत्मा की ताकत ज्ञान में और प्योरिटी में, ज्ञान और प्योरिटी के द्वारा ही फिर जो हमारा कर्म करता है वो कर्म में भी ताकत होती है। तो हमें क्या करना है, क्या बनना है, है ना, विश्व का मालिक बनना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान, मन को इतना शुद्ध बनाना है, इतना सात्विक बनाना है, इतना निरहंकारी बनाना है। खैर पवित्रता में सब कुछ आ जाता है, और जितना आत्मा पवित्र बन जाती है, निर्विकारी बन जाती है, उसका ही दूसरा अर्थ है कि वो मुक्त बन जाती है ना। पवित्र अर्थात मुक्त, मुक्त अर्थात कर्मातीत। जो आत्मा मुक्त है, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, वो कर्म करेगा तो कर्म के बंधन में भी बंधा हुआ नहीं होता है। जिसको ही बाबा ने भविष्य में, फिर अभी का प्रैक्टिस, अभी की संगम युग की प्रैक्टिस ही हमें भविष्य में, बाबा के तुम्हारा कर्म क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है ना। हम कमाया हुआ यहां का भाग्य जो बना हुआ है वही हमारा चलता है आगे, बाकी रूटीन का कर्म अकर्म होता है। तो इसीलिए जैसे कहा कि भाई हमारे लाइफ का आधार ही है, और बाबा ने आके हमें ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के आधार से हम अभी अपने हर कर्म का, हर कर्म की कीमत बढ़ा सकते हैं, हर कर्म की कीमत बढ़ा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी हमें साधारण कर्म नहीं करना है। हम रूटीन कॉन्शियसनेस में करेंगे तो साधारण कर्म करेंगे, परंतु बाबा जो कहते हैं वो कॉन्शियसनेस में करेंगे तो हम दिन प्रतिदिन बहुत शाहूकार बनते जाएंगे। शाहूकार स्थूल रूप से की बात नहीं है, परंतु भाग्य, हमारा भाग्य इतना उत्तम और श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो सेकंड में किसी का भाग्य बना देना बाबा के हाथ में, इसलिए हमारा काम क्या है, खाली स्थिति को बना के रखना, स्थिति को बना के रखना, तैयारी रखना। बाबा किसी भी आत्मा को किसी भी सेवा के लिए चूज कर सकता है और करा लेता है, ये उनके हाथ में। तो इसीलिए हमें अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कितना काम करना है, एक कर्मों के हिसाब किताब को चुकतु करते जाओ, है ना, अपने विकर्म को विनाश करते जाओ, श्रेष्ठ कर्म बनाते जाओ, है ना, अपने मन की स्थिति के साथ श्रेष्ठ कर्म बनाते जाओ और अंत में कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हुए सेवा में उपस्थित रहो, है ना, अंतिम घड़ी तक, अंतिम घड़ी तक सेवा में उपस्थित। अच्छा, ओम शांति।
श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।